मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 29 अप्रैल 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे प्रतिभूति बाजार, जिसे आप सिक्योरिटी मार्केट कहते हैं, बोलचाल में आप इसे शेयर मार्केट भी कह लेते हैं, स्टॉक एक्सचेंज भी कह लेते हैं, है ना, हालांकि थोड़ा थोड़ा इनमें फर्क जरूर है लेकिन है सब एक ही जैसे, इसके बारे में कुछ बातें करना चाहूंगा। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। हालांकि जो दूसरी खबरें हैं ये भी कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े से बदलाव के लिहाज से आइए थोड़ी बातें जान लेते हैं। एक अच्छी खबर है कोरोना को लेकर के, आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम उनसे अपने नियंत्रण में लेते चले जा रहे हैं। बहुत से ऐसी रिपोर्ट भी आ रही हैं कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे कोरोना का जो दुष्प्रभाव है वो कम होता चला जाएगा। टीके धीरे धीरे विकसित किए जा रहे हैं, ऐसी संभावनाएं आज के अखबारों में व्यक्त की गई हैं कि हो सकता है कि सितंबर तक नहीं तो दिसंबर तक इसका वैक्सीनेशन आ ही जाएगा। तो ये सब अच्छी खबरें हैं। कुल मिलाकर के ये है दोस्तों कि अभी कोरोना जितना भी उत्पात मचा रहा है ये अपने क्लाइमेक्स पर है, धीरे धीरे इसका उत्पात मचाना डेफिनेटली कम होगा। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने बकायदे ये बात कही है कि हमारे 300 जिले ऐसे हैं जो कोरोना से प्रभावित नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। और 129 जिले ऐसे हैं जिन्हें उन्होंने हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया हुआ है कि इन जिलों पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। अब आप देखिए कि प्रशासनिक दृष्टि से अगर इससे आप विश्लेषित करें तो ये हमारे पक्ष में बहुत ज्यादा है। पक्ष में इसलिए बहुत ज्यादा है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक राज्य है और उसमें 50 जिले हैं, ठीक है, उस 50 जिले में 10 जिले हॉट स्पॉट डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, तो उसके पास 40 जिले बच गए, 40 जिले उसके सेफ है। तो प्रशासन की दृष्टि से आप सोचेंगे तो ये जो 40 जिले का जो अमला है, जो मैन पावर है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, प्रशासक हों, स्वास्थ्य कर्मी हों, पुलिस फोर्स हो, इसको आप बकायदे इस 10 जिले में भेज सकते हैं। यानी कि इन 10 जिलों को आप बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रण में ले सकते हैं कोरोना की दृष्टि से। अगर 50 के 50 जिलों में फैला हुआ हो तो फिर वही प्रशासन की जो शक्ति है वह बिखर जाएगी। तो इसलिए अगर हम इसको पूरे देश के स्तर पर फैला दें तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि केवल 129 जिलों में इसका प्रभाव है, हॉटस्पॉट बने हुए हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम इस पर नियंत्रण पा लेंगे। न्यूज में आपने एक लंबी न्यूज सुनी कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर प्रसाद जी, उन्होंने ब्रिक्स के जो विदेश मंत्री हैं उन नेताओं के साथ टेली कॉन्फ्रेंसिंग की, और इसके बाद उन्होंने भारत का पक्ष रखा कि भारत क्या क्या कर रहा है। वो बहुत अच्छा, छोटा सा हिस्सा सही लेकिन बहुत अच्छा हिस्सा था। अब आप देखिए कि जब आप इस तरह की न्यूज सुनते हैं, मैं खासकर ये बात उनके लिए बता रहा हूं जो बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, है ना, अदरवाइज तो इस पर हम लोग इससे पहले काफी चर्चाएं कर चुके हैं और इसके लिए मैं अपने पुराने स्टूडेंट से माफी भी चाहूंगा क्योंकि मुझे नए स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें बार बार दोहरानी पड़ती हैं, है ना, लेकिन इसी बहाने चलिए आपका भी रिविजन हो जाता है। अब ये देखिए, ये ब्रिक्स, BRICS ब्रिक्स, है ना, ब्रिक्स। अब ये 5 अल्फाबेट हैं इसमें, और मजेदार बात यह है कि इसमें 5 ही देश हैं, ये एक संगठन है, इसमें 5 ही देश हैं और उन देशों का जो पहला शब्द है उसको लेकर के ये ब्रिक्स बनाया गया है। जब हम बी कहते हैं तो ब्राजील हो जाता है, जब हम आर कहते हैं तो वो रूस हो जाता है, जब हम आई कहते हैं तो आप हो जाते हैं यानी कि इंडिया हो जाता है, जब हम सी कहते हैं तो वो चाइना हो जाता है, और जब हम एस कहते हैं तो साउथ अफ्रीका हो जाता है। तो ये 5 देश हैं और आप देखिए कि इन 5 देशों में बहुत महत्वपूर्ण देश है, जो ब्राजील है वो आज लैटिन अमेरिकी देश, या कह लीजिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे तेजी के साथ उभरता हुआ देश है ब्राजील। अफ्रीका में साउथ अफ्रीका काफी विकसित देश है और काफी तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। तो अफ्रीका महाद्वीप से साउथ अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन है जो अपने आप में एक बड़ी बात है। एशिया से 2 जो एशिया के टाइगर हैं आप देख रहे हैं, भारत और चीन, जिनकी पॉपुलेशन को अगर आप मिला दें तो आप देखें कि दुनिया की कितनी बड़ी पॉपुलेशन उसमें कवर हो जाती है, वो इस संगठन के सदस्य हैं। और फिर रशिया, यूरोप से रशिया हो गया, रशिया अपने आप में एक शक्तिशाली राष्ट्र, फिर से शक्तिशाली होने की ओर बढ़ रहा है। तो इस तरह से ब्रिक्स अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप और जुटा लीजिएगा। मित्रों, अब मैं सीधे आज के मुख्य विषय पर आता हूं। इस विषय को मैंने क्यों चुना, ध्यान होगा कि कल मैंने आपको म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी और ये कहा था कि म्यूचुअल फंड के बारे में आपको तैयारी ठीक ठाक कर लेनी चाहिए, समझ लेना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि आप में से वे स्टूडेंट जो मुझ पर थोड़ा भी विश्वास करते हैं वो डेफिनेटली मेरे इस तरह के जो छोटे छोटे निर्देश हैं जो आपके अपने निर्धारित समय में से उसके छोटे से टुकड़े की मेरे हिसाब से डिमांड करते हैं वो देने का कष्ट कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड है उसी से, मैं तो नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह का एक और भी मार्केट है। म्यूचुअल फंड भी यहां काम करते हैं, शेयर की खरीदी बिक्री करते हैं। तो मैंने सोचा कि इसी कंटिन्यूएशन में मुझे शेयर मार्केट के बारे में कुछ बातें कर लेनी चाहिए। और जो तात्कालिक कारण इसका बना वो ये कि आज के अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस जियो और इनके जो दूसरे वो हैं, उसने राइट इशू लाने का फैसला किया है। आप कंपनी को भूल जाइए, है ना, वो राइट इशू लेकर आएगी। राइट इशू, अधिकार निर्गमन। तो ये राइट इशू क्या है इसको समझाने के लिए फिर मुझे लगा कि इसी बहाने मुझे शेयर मार्केट के बारे में थोड़ी सी जो मूलभूत बातें हो सकती हैं और जो स्टूडेंट को जाननी भी चाहिए सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के तौर पर ही, तो उसकी बातें करनी चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखकर के दोस्तों आज मैं आपसे शेयर मार्केट के बारे में बात करने जा रहा हूं। देखिए, जब हम शेयर मार्केट कहते हैं या सिक्योरिटी मार्केट कहते हैं तो क्या है, वो भी बाजार है, है ना। मार्केट का तो मतलब बाजार है, तो बाजार में क्या चीजें होती हैं। सही बात यह है कि बाजार में कुछ चीजें कुछ बेची जाती हैं और खरीदी जाती हैं। बाजार का यही है, कपड़ा बाजार जाते हैं तो वहां कपड़ा खरीदा जा रहा है, सब्जी बाजार जा रहे हैं तो वहां सब्जी खरीद रहे हैं आप, यही हो रहा है, खरीद भी रहे हैं बेच भी रहे हैं। अब यहां है कि आप जब कपड़ा बाजार जाते हैं तो वहां आपको एक व्यक्ति बेचता हुआ दिखाई दे रहा है, दुकानदार बेच रहा है और आप खरीद रहे हैं, तो खरीद बिक्री जहां हो रही है वो बाजार है। तो जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं, ज्यादा अच्छा शब्द सिक्योरिटी मार्केट है लेकिन शेयर मार्केट के नाम से पॉपुलर हो गया है, तो यह एक प्रकार से वह बाजार है जहां शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, प्रतिभूति सिक्योरिटी खरीदे बेची जाती है, बॉन्ड खरीदे बेचे जाते हैं, डिबेंचर खरीदे बेचे जाते हैं, ये सब खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ लोग बेचते हैं, एक ही व्यक्ति हो सकता है कि कोई चीज बेच रहा हो और कोई चीज खरीद रहा हो। दोस्तों, यहां मैंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, शेयर, प्रतिभूति, बॉन्ड, डिबेंचर आदि, इन शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया है। ये क्या है, अगर मैं इसे समझाने लगूंगा तो फिर शेयर मार्केट छूट जाएगा और हम राइट इशू तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो पहली बात तो यह कि आपको जानना चाहिए कि क्या होते हैं। तो थोड़ा सा आज वक्त निकाल लीजिए, किताब उलट लीजिए और इनके बारे में जान लीजिए। जब मैं जानने की बात कह रहा हूं तो समझ लीजिए कि ये क्या होते हैं, इन्हें आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब मैं शेयर पर आता हूं। देखिए, शेयर बेसिकली क्या है, मेरे क्लास के स्टूडेंट जो रहे हैं उन्हें शायद इस बात की जानकारी होगी, मैंने इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की थी और मैं उन्हें याद दिला रहा हूं कि प्लीज आप अपने दिमाग में लेकर के आए कि शेयर मार्केट को मैंने आप सबको कैसे समझाया था। देखिए, शेयर का मतलब है साझेदारी। आप शेयरिंग टैक्सी लेते हैं, शेयरिंग ऑटो लेते हैं, तो एक आदमी दो चार लोग मिलकर के फिर उसको आप शेयर करते हैं, उसके जो पैसा आता है किराए का दे देते हैं और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। तो यहां जो आप शेयरिंग कर रहे हैं वो कंपनी के साथ कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी है, मान लीजिए रिलायंस की चलिए हम बात करते हैं, वो बहुत बड़ी कंपनी है, 1000 करोड़ रुपए की कंपनी है, लेकिन उसको लगता है कि यार 500 करोड़ रुपए और मिल जाए तो मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा या एक नया एक शुरू कर दूंगा, एक्सपेंड करूंगा या अपनी कंपनी का। तो अब उसको लगता है कि 500 करोड़ रुपए मैं कहां से जुटाऊं, तो उसको लगता है कि यार ये पब्लिक से जुटाना चाहिए, पब्लिक से लो 500 करोड़ रुपए, तो वो 500 करोड़ रुपए के शेयर जारी कर देता है। देखिए, ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी कभी भी जब चाहे जितने के शेयर जारी कर दे। एक ऑर्गेनाइजेशन का आपने सुना होगा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI, सेबी। इन सब का जो नियामक है, इन सब की जो निगरानी करने वाले है वो सेबी है। वहां बकायदे आपके अप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, तभी आप शेयर आप इशू कर सकते हैं। और जब वहां से परमिशन मिल जाती है सेबी से, तभी आप शेयर के लिए पब्लिक को ऑफर दे सकते हैं, ठीक है। तो आप शेयर निकालते हैं कि 500 करोड़ रुपए के हम शेयर देंगे और हमारे एक शेयर की कीमत 10 रुपए है, 100 रुपए है, जो भी आप निर्धारित करना चाहें वो आप कर दीजिए। तो दोस्तों जो पहला शेयर जो आता है, अब मैं आता हूं सीधे सीधे राइट इशू पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो जुटाने के जो तरीके हैं शेयर मार्केट से पैसे, वो तीन तरीके से जुटाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, शॉर्ट फॉर्म में आईपीओ। ये शब्द अखबारों में आपको खूब पढ़ने को मिलता होगा, आईपीओ आईपीओ आईपीओ, आरंभिक सार्वजनिक निर्गम, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। यानी कि जो कंपनी है वो सीधे सीधे पब्लिक से जाकर के पैसा जुटाती है, यानी कि शेयर निकालती है, पब्लिक उस शेयर के लिए अप्लाई करे और बकायदे फिर जिनको जो अप्लाई करते हैं उनको शेयर दे दिए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा गया इनिशियल सार्वजनिक निर्गम, आईपीओ। अब आता है राइट इशू। ये राइट इशू क्या है दोस्तों? ये बहुत सरल है, अब बस थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। राइट का तो मतलब होगा कि अधिकार, यानी कि आपका अब अधिकार है। देखिए, इनिशियल पब्लिक ऑफर में आपका अधिकार नहीं है, हो सकता है कि आपको शेयर ना मिले। मान लीजिए कि उन्होंने 500 करोड़ रुपए के शेयर अब निकाले थे और पता लगा कि साहब 2000 करोड़ रुपए के लोगों ने अप्लाई कर दिए, तो अब पता नहीं आपको कितने मिलेंगे नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि 25% जितना भी आपने अप्लाई किया उसका 25% मिल जाए, तो वहां कोई आपका अधिकार नहीं, लेकिन यहां आपका अधिकार है। लेकिन यह अधिकार है किसको? पब्लिक को अधिकार नहीं है, ये अधिकार उन लोगों को है जो पहले से ही कंपनी के शेयर धारक हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपके पास रिलायंस इंडस्ट्री के 100 शेयर हैं, तो आप साझेदार हो गए, पहले से आपके पास शेयर हैं। तो कंपनी कह रही कि हम राइट इशू जारी कर रहे हैं और राइट इशू के तहत जिनके पास 100 शेयर हैं उनको हम 50 शेयर राइट इशू के रूप में देंगे। आपके पास 100 शेयर हैं तो आपको 50 मिल जाएंगे, अगर आपके पास 1000 हैं तो आपको 500 मिल जाएंगे। यानी कि अनुपात उन्होंने किया 2 के बदले में 1। अगर आपके पास 20,000 शेयर हैं तो आपको 10,000 शेयर राइट इशू के रूप में मिल जाएंगे और यह आपका अधिकार है। आप वहां ज्यादा भी अप्लाई नहीं कर सकते, आपके नाम से जितने शेयर हैं आप उतने शेयर के लिए आप कंपनी को अप्लाई कर दीजिए, उतने शेयर आपको मिल जाएंगे। यानी कि ये बिल्कुल निश्चित है, दोनों चीजें इसमें निश्चित होती हैं, लेकिन आप अप्लाई करें या नहीं करें ये आपके ऊपर है। ये नहीं है कि आप मजबूर हैं कि आपको अप्लाई करना ही करना है, याद रखिए। लेकिन अगर आप अप्लाई करेंगे तो जो रेशियो, जो अनुपात फिक्स किया गया है, उस अनुपात में उतने शेयर आपको मिल ही जाएंगे। इसीलिए इसे कहा जाता है राइट इशू। और जो तीसरा तरीका है दोस्तों, वो प्राइवेट प्लेसमेंट का है। मतलब जो कंपनी है, जैसे अगर ये रिलायंस की हम बात कर रहे हैं, वो किसी दूसरी कंपनी से जाकर के बात करे और कहे कि भाई 500 करोड़ रुपए हैं तो ये इसमें से आप ऐसे करो कि 300 करोड़ रुपए के शेयर आप ही खरीद लो, इकट्ठे हम आपको देते हैं, तो वो सस्ते रेट पर उनको दे देते हैं। और अगर उस सामने वाली कंपनी को लगता है कि हाँ इस रेट में तो इसे ले लेना चाहिए, तो वो सीधे भी शेयर ले सकती है, जिसे हम कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी कि निजी स्थापन। तो देखिए कंपनी के लिए भी आसान होता है, रिलायंस जैसे के लिए कम खर्चीला नहीं है, फट से हो गया, जल्दी से हो गया, जाके बातचीत की और उसको पैसा मिल गया। तो जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं, जो वित्तीय संस्थान हैं, वो इस तरह से प्राइवेट प्लेसमेंट के तहत शेयर्स ले लेती हैं। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, आज मैं आपको बहुत सारी क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों आप सब अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से देख लीजिएगा। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, हालांकि ईमेल आए तो बहुत से, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि केवल 2 ही ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं उनके नाम लूं। और ये 2 स्टूडेंट हैं नितिन कुमार पटना से और प्रियंका चौधरी, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।